सुर्खियों में
ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए यूपीआई क्रांति, डिजिटल भुगतान में विश्व में अग्रणी भारत पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं हर्ष रंजन।
भारत में कई क्रांतियां हुई हैं, जैसे श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, लेकिन आज का जो दौर है, जिसे पूरी दुनिया स्वीकार कर रही है, वो है लेन देन, नकदी लेन देन की क्रांति। बात कर रहे हैं हम यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की। दो बटन दबाए, पैसा ट्रांसफर किया और इसी तरीके से पैसा ले भी लिया। हाल ही में इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने सबसे तेजी से डेवलप कर रहा, ग्रो कर रहा रिटेल डिजिटल पेमेंट में भारत का नाम पूरी दुनिया में सबसे आगे रखा है। और हमें याद भी है कि जब G20 की बैठक हुई थी, तो उसमें खास तौर पर जो हमारे विदेशी मेहमान थे, सबने यही कहा था कि यूपीआई पेमेंट्स में भारत ने एक कमाल कर दिखाया है, जो पूरी दुनिया के लिए एक सबक है। और आज का विषय यही है, और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आर्थिक विशेषज्ञ शरद कोहली जी मौजूद हैं। शरद जी, बहुत बहुत स्वागत आपका।
नमस्कार, सभी श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम और आपको भी।
आपकी सबसे पहली टिप्पणी कि लोग ये पहले कहते थे कि भारत बाद में काम करता है, दुनिया के पश्चिम देशों में पहले वो चीज हो जाती है, लेकिन यूपीआई पेमेंट के मामले में तो भारत ने उल्टी गंगा बहा दी है।
बिल्कुल हर्ष, बल्कि यूपीआई के आप तो बहुत सारे ऐसे मामले हैं जब भारत ने पीछे छोड़ दिया है वेस्ट को, जिसका आप जिक्र कर रहे थे। अब वो जमाना लद गया जिसको बोलते हैं कि भारत पीछे रहता था। मुझे लगता है यूपीआई बिल्कुल आपने ठीक कहा, एक क्रांति की तरह आया है, और जिस प्रकार से इसमें ट्रांजैक्शंस होते हैं और जो इसकी पहुंच है, उसने वाकई में पूरी दुनिया को हैरान कर दिया, ना केवल भारत में। और कुछ हम जो लोग आंकड़ों में इंटरेस्ट रखते हैं, सिर्फ दो आंकड़े का मैं जिक्र करूंगा कि टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कितने हो रहे हैं और टोटल कितने के ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। तो अगर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस की बात करें और हम जून महीने की बात करें, अब हम जुलाई में है पिछले महीने के, अभी ये महीना तो चल रहा है, 1900 करोड़ से भी ज्यादा के ट्रांजैक्शंस हुए। इसका मतलब हुआ कि रोज के आपके करीब करीब 63 करोड़ ट्रांजैक्शंस, और जो लोग मिलियंस में देते हैं 630 मिलियन ट्रांजैक्शंस रोज के। और अगर वैल्यू की बात की जाए हर्ष, तो इसमें आप देखेंगे कि 24 लाख करोड़ पिछले महीने में टोटल ट्रांजैक्शंस आए हैं। और मैं बड़ी इंटरेस्टिंग एक बात इसमें से निकाल रहा था, वो इंटरेस्टिंग बात ये थी कि अगर 24 लाख करोड़ के ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं और जिस रफ्तार से ये ग्रो कर रहा है, करीब 30-32% की इसमें ग्रोथ दिखाई दे रही है, तो बहुत जल्द 25 लाख करोड़ प्रति माह आ जाएगा। और 25 लाख को जब मैं 12 से गुना करता हूं, तो करीब 300 लाख करोड़ आ जाता है। और आपको ये फिगर, जो लोग याद करने की कोशिश करें कि ये फिगर कहां से आ रही है, हमारी जो भारत की जीडीपी है वो इस समय $4 ट्रिलियन को पार कर चुकी है। $4 ट्रिलियन का हुआ मतलब करीब हम 350 लाख करोड़ के आसपास हम पहुंचने वाले हैं। थोड़ा बहुत इधर उधर मैं राउंड फिगर करके बता रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है हर्ष, जिस बात पे आना चाह रहा था कि हमारे यूपीआई के ट्रांजैक्शन की वैल्यू सालाना वो हमारी जीडीपी को के नंबर को क्रॉस करती हुई दिख रही है बहुत जल्द आने वाले समय में। और एक बिल्कुल जो व्यक्ति कभी स्कूल नहीं गया, जिसने कभी पढ़ाई नहीं करी, उससे लेकर और एक मल्टीनेशनल में बैठे हुए एग्जेक्टिव, हर व्यक्ति इसको यूज कर रहा है। एक छोटे से गांव से लेकर एक बड़े शहर तक, एक सड़क के किनारे बैठे हुए वेंडर से लेकर एक 5-स्टार होटल तक इसका इस्तेमाल हो रहा है। और मैं हैरान तो जब हुआ हर्ष, मैं पीछे एक शादी में गया और वहां पर जब मैं सगन देने के लिए, आप सगन देते हैं कभी शादी में जाते हैं, वहां पर मैंने QR कोड लगा देखा, लोग सगन के लिफाफों की जगह अपने फोन निकालकर और जो 1100, 2100, 3100, 500 जो भी जो देना चाहता था उससे पे कर। उससे भी ज्यादा हैरानी हर्ष मुझे जब हुई, जब मैंने एक बंबई में एक जगह एक सड़क पर गाड़ी रुकी, मैंने शीशा खोला, उसने कोई मांगने वाला था मेरे से, उसने कहा साहब कोई, मैंने कहा भाई मेरे पास खुले पैसे नहीं। आप हैरान होंगे सुनके, उसने गले में QR कोड अपने अंदर शर्ट में से निकाल के बाहर कर दिया कि साहब मुझे आप UPI कर दीजिए। तो ये बताता है कि UPI की आज पहुंच कहां तक हो चुकी है। और ये तब है, ये बात ध्यान देने वाली है, कि अभी हमारे यहाँ स्मार्टफोन्स मात्र 66 करोड़ के आसपास है, यानी कि 142 करोड़ की आबादी में हमारे पास 66 करोड़ मोबाइल फोन स्मार्टफोन्स हैं, तब ये इतनी पेनिट्रेशन है। पर अगर आप हाउसहोल्ड्स लें, यानी कि जो परिवार है, उसमें करीब 85% हाउसहोल्ड्स के पास स्मार्टफोन है, यानी कि घर में एक भी व्यक्ति के पास स्मार्टफोन है तो उसको सब लोग फिर इस्तेमाल करते हैं। तो ये यूपीआई की जो आप तेज रफ्तार देखते हैं ना, ये इसी वजह से है कि जैसे जैसे लोगों के हाथ में स्मार्टफोन आ रहा है, जैसे जैसे इसकी पेनिट्रेशन हो रही है। और माना जाता था हर शुरू में कि ये जब, मुझे याद है 2016 में आया था, अब तो 700 बैंक इसके साथ जुड़ गए हैं, जब आया था ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये कौन इसको समझेगा, ये यूपीआई आईडी क्या होता है, आईडी कैसे बनती है, ये केवाईसी करनी पड़ती है। आज मैं अगर बिल्कुल आसान भाषा में कहूं तो बच्चों का खेल हो चुका है, कोई भी व्यक्ति अपना करके और अपने आप आपके बैंक कैसे ढूंढ के आ जाते हैं इसमें लोग हैरान होते हैं। तो कुल मिला के मैं इसको एक चमत्कार मानता हूं, एक क्रांति मानता हूं, और जो इसने भारत के विकास में योगदान दिया है मुझे लगता है वो बिल्कुल ही अतुलनीय है, उसकी किसी भी चीज से तुलना नहीं की जा सकती।
बिल्कुल, और आपने सही कहा कि ये एक चमत्कार से कम नहीं है, भारत ने यूपीआई लेन देन में जो प्रगति की है और इसी चमत्कार से पूरी दुनिया चमत्कृत है। साल 2016 में यूपीआई सिस्टम देश में लागू किया गया था, आज तकरीबन हम कहें 9 साल से अधिक हो चुके हैं, 10 साल होने वाले हैं। पिछले इन 10 सालों में जिस तरीके से जबरदस्त प्रशासनिक सुधार हुए हैं देश में और फाइनेंशियल इंक्लूजन का काम जिससे हुआ है, लोगों के बैंक खाते खुले हैं, उस दिशा में यूपीआई एक बहुत बड़ा मार्गदर्शक रहा है और प्रगति का कारण भी रहा है। और आपने ठीक कहा कि यूपीआई हैंडल्स डेली जो ट्रांजैक्शन है वो 640 प्लस मिलियन ट्रांजैक्शंस रोज के हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इससे जो बूढ़े और गरीब परिवार के लोग भी हैं, जिनसे अक्सर हम पहले सुनते थे कि पैसे भिजवाए आपने मनी ऑर्डर से, या बच्चा कहीं काम कर रहा है उनके पैसे कहीं गुम हो गए, कहीं चोरी हो गए, कहीं उनको पूरे नहीं मिले, आज उन्हें पूरे पैसे मिल रहे हैं, कहीं छूटे देने की जहां समस्याएं होती थी वो समस्याएं खत्म हो गई हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप थोड़ी सी टिप्पणी करें कि यूपीआई की सिक्योरिटी पे कितना सेफ है, क्योंकि बहुत कम सुनने में आता है कि गड़बड़ी हुई है।
जब भी ऐसा माना जाता है, जब भी कहीं टेक्नोलॉजी होती है तो ऐसा कहते हैं कि उसकी काट पहले आ जाती है, आपने सुना होगा ये। तो जब भी कोई टेक्नोलॉजी का विकास होता है तो उसकी काट साथ साथ उसके चलती है। ये सच है कि कभी कभी इसकी सुनने में आता है कि किसी का अकाउंट हैक हो गया, पर मुझे ऐसा लगता है हर्ष इसमें जो ज्यादा कारण है वो लोगों की खुद की लापरवाही की वजह से होता है। आपने अपना यूपीआई आईडी, आपने अपना क्यूआर कोड बिना देखे किसी का स्कैन करवा दिया, किसी और का कोड स्कैन कर लिया, आप किसी के कहे सुने में आ गए, या बहुत आसानी से आपने किसी ने कोई चीज बेचनी चाहिए आपने उसको कर दिया, तो आपने या कोई गलत उस पे नंबर डाल दिया, तो इस तरीके की जब गलती, या आपने फोन नंबर चेंज किया, उसको आपने केवाईसी नहीं कराई वगैरह वगैरह। तो मुझे लगता है कि ज्यादातर जब सिक्योरिटी का इशू आता है तो अगर हम 100 मान लीजिए ऐसे मामले आए, मुझे लगता है उसमें से 70-80 मामले ऐसे होते हैं जहां लोगों की खुद की जानकारी के अभाव के कारण। और वहीं मुझे लगता है आज के जैसा हम जो कार्यक्रम कर रहे हैं, ये कार्यक्रम वहीं सहायक होता है कि लोगों को ये जानकारी देता है कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसको अंग्रेजी में हम डूज एंड डोंट्स कहते हैं। तो मुझे लग रहा है कि सिक्योरिटी की जो आपने बात पूछी है पूरी तरह से सिक्योर है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई इसको चलाता है, रिजर्व बैंक, और वो दोनों मिलकर इसको कंट्रोल करते हैं। 750 बैंक्स इसमें है, और जैम ट्रिनिटी जिसको हम कहते हैं, जनधन आधार मोबाइल, मुझे लग रहा है इन तीनों चीजों ने यूपीआई को भी बढ़ावा देने में बहुत मदद किया है। जनधन अकाउंट फाइनेंशियल इंक्लूजन की आप बात कर रहे थे, जिसको हम वित्तीय समावेश कहते हैं, जो आप लेके चलते हैं सबको साथ में, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन इससे बढ़ा है। इससे इकोनॉमी की फॉर्मलाइजेशन बढ़ी है, यानी कि जो लोग कैश में पहले ट्रांजेक्शन करते थे, जो बिजनेस में करते थे, शायद कम लोग जानते हैं कि इस समय 6.5 करोड़ बिजनेस संस्थान इस समय यूपीआई से पेमेंट लेते हैं। और मजे की बात यह है कि हम एमएसएमई जिनको कहते हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, उनकी गिनती भी लगभग 7 करोड़ के आसपास है। इसका मतलब जितने भी एमएसएमई हैं ज्यादातर वो इस समय यूपीआई से पेमेंट लेते हैं। तो मुझे सिक्योरिटी का कोई कंसर्न इतना बड़ा नजर नहीं आता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, बहुत कम मामले सुनने में आते हैं, और जो सुनने में भी आते हैं ज्यादातर उसमें यूजर की खुद की लापरवाही की वजह से हो जाता है। ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने आपके यूपीआई अकाउंट को हैक कर लिया। बहुत स्ट्रांग प्रोटेक्शन सिस्टम एनपीसीआई ने इसमें बनाया हुआ है, और इसको जब तक आपकी तरफ से ऑथेंटिकेशन नहीं होगा, जबकि आपकी तरफ से ओटीपी नहीं आएगा, जब तक आप पूरी तरह से सिस्टम को नहीं पता लगेगा कि आप ही हैं, क्योंकि आधार से ये लिंक्ड है और आधार तो एक व्यक्ति का एक ही होता है। तो मुझे सिक्योरिटी की इसमें विशेष चिंता नहीं दिखाई देती। और सबसे बड़ी बात हर्ष, इसमें जो यूनिक बात जो दिखी, आपने फ्रांस का जिक्र किया, यूएई का किया, श्रीलंका का किया, मुझे लगता है इसका फ्री होना, क्योंकि बहुत सारी बातें उठती रहती हैं कि इस पे चार्जेस लगा दिए जाए, बिल्कुल टोटली फ्री है। जो लोग पेमेंट करते हैं वो जानते होंगे, उनका एक नया पैसा भी उसमें कटता नहीं है। जितने पैसे आप दूसरे को भेजते हैं उतने ही पैसे इसमें पहुंचते हैं बिना किसी लाग लबेड़ के, इसमें बिल्कुल क्लियर है।
कोई सर्विस चार्ज नहीं है,
कोई सर्विस चार्ज नहीं,
मिनिमम रखने का कोई चार्ज नहीं,
और ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आप जब आज तक लोग बैंक से ट्रांजेक्शन करते थे, डेबिट कार्ड यूज करते थे, क्रेडिट कार्ड यूज करते थे, और आज भी करते हैं, चेक से भी पेमेंट्स होती हैं, तो आप देखेंगे कि बैंकिंग प्रणाली भी कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ चार्ज चार्जेस आपको देने पड़ते हैं, पर ये जो एनपीसीआई और रिजर्व बैंक द्वारा चलाया जा रहा अभियान है पूरा यूपी, मैं इसको अभियान बोलता हूँ क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसने क्रांति लाके खड़ी कर दी है, तो मुझे लगता है ये इसका टोटली फ्री होना इसका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और हम 10 रुपए की भी पेमेंट करते समय हिचकिचाते नहीं है, हमको पता है 10 रुपए दे रहे हैं तो 10 रुपए ही दूसरे के पास पहुंचेंगे और मुझे उसकी कोई कॉस्ट नहीं देनी पड़ेगी।
और शरद जी, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस में ये कहा है कि पूरी दुनिया में जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस होते हैं उसका 50% भारत के माध्यम से ही, हम कह सकते हैं वाया इंडिया ही होता है। आइए सुनते हैं क्या कहा।
आज विश्व का 50% डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में होता है। फ्रांस जैसे कई देश इससे जुड़े हैं, साइप्रस को भी इससे जुड़ने के लिए बात चल रही है और मैं इसका स्वागत करता हूँ।
भारत में एक आंकड़ा मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ शरद जी, जितने डिजिटल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उसमें से 85% डिजिटल ट्रांजैक्शन जो है वो यूपीआई के जरिए हो रहा है।
यूपीआई ने जो बदलाव किया है, अब से पहले आप क्या करते थे, जब 2016 से पहले जब आप डिजिटली पेमेंट करते थे तो आप ऑनलाइन बैंकिंग करते थे या आप अपना डेबिट कार्ड यूज करते थे या आप अपना क्रेडिट कार्ड यूज करते थे, यही मुद्दे थे। और एक और चीज थी जिसको हम वॉलेट्स कहते थे, आपको याद होगा
जी,
ये वॉलेट्स आज भी है और ये इनकी इंटर ऑपरेबिलिटी की बात करते हैं क्योंकि आप एक कोई भी आप भीम है, पेटीएम है, गूगल पे है, बहुत सारे ऐसे एप्स हैं, उन्होंने अपने वॉलेट्स छोड़ दिए। आपको याद होगा पहले आपको इन एप्स में पैसा रखना पड़ता तो जिसके पास होता था अब उसको पेमेंट आसानी से कर पाते थे, अब तो जरूरत नहीं है। कितनी जल्दी यूपीआई ने उसको आउटडेट कर दिया, आपके पास पैसा रखने की जरूरत नहीं है, हम सीधा बैंक से निकाल के दूसरे के बैंक में डाल देंगे ना, हम बीच में पैसे को कहीं रखने की जरूरत क्या है। मुझे लगता है बहुत बड़ा बदलाव यूपीआई ने इस मामले में लाया।
आप अगर छोटी छोटी चीजों से भी देखें तो जो एक इंटरेस्ट का पेमेंट होता है वो अब पब्लिक को सीधे जा रहा है। मुझे वो वक्त भी याद है जब आप चेक से पेमेंट करते थे, आपके खाते से पैसे निकल जाते थे 2-4 दिन के बाद और जहां जाने हैं वहां तक पहुंचते नहीं थे, 2 दिन का वक्त उसमें भी लग जाता था। अगर इंटरसिटी चेक होते थे तो और वक्त लगता था कई बार, तो मैं थोड़ा और पहले आपको 90 के दशक में ले जाना चाहता हूं, महीने महीने दिन लग जाते थे अगर किसी दूसरे शहर का आपने चेक डाला। तो बैंकिंग व्यवस्था में जो पारदर्शिता आई है, जो तेजी आई है, इसमें रॉकेट की स्पीड देने का काम किया है यूपीआई ने। यूपीआई आप बहुत अंदर तक फाइनेंशियल रिसर्च से भी जुड़े हुए हैं, आपको क्या लगता है कि लगातार इसमें इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं, अगला इम्प्रूवमेंट और क्या हो सकता है, यूपीआई को हम और किस शेप में देख सकते हैं?
मुझे लगता है कि यूपीआई अंतर्राष्ट्रीय पेमेंट्स में जरूर आगे आएगा। अभी आप जैसे स्विफ्ट से पेमेंट करते हैं, आप अभी पेमेंट भेजते हैं बैंकिंग माध्यम से भेजते हैं जिसमें टाइम लगता है, चार्जेस भी लगते हैं, तो मुझे लगता है जैसे जैसे बाकी देश इसको अडॉप्ट करते जा रहे हैं, हमने फ्रांस की बात करी, हमने यूएई की बात करी, हमने श्रीलंका की बात करी और भी बहुत सारे देशों ने इंटरेस्ट दिखाया है, तो आप ये समझिए कि जब बाकी देशों में भी ये लागू हो जाएगा तो हमारा और उनका प्लेटफॉर्म एक ही होगा, तो आपको यहां से बाहर पेमेंट भेजनी, हालांकि अभी भी है ये सुविधा पर अभी लिमिटेड तरीके से है, तो मुझे लग रहा है एक वो बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है कि आपको, और जैसे जैसे यूपीआई आप देख रहे हैं इसमें वैल्यू एडिशन हो रहा है, अब आप यूपीआई लाइन ऑफ क्रेडिट शुरू हो गया है
जी।
इसमें आप यूपीआई के जरिए अब अगर आपको लोन चाहिए तो आपको यूपीआई लाइन ऑफ क्रेडिट जिसको कहते हैं वो लोन आपको आसानी से मिल जाता है। मैं अगर यूपीआई का पर्यायवाची इस्तेमाल करूं तो सबसे अच्छा पर्यायवाची बनता है आसान। मुझे लगता है ये ऐसा आसान है जो सब आसानी से समझ सकते हैं कि जब यूपीआई अगर कहीं आएगा, किसी भी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में आएगा, चाहे वो फॉरेन की पेमेंट्स में आए, चाहे वो लाइन ऑफ क्रेडिट में आए, तो मुझे लग रहा है ये आसान शब्द उसके साथ जुड़ जाएगा। तो जहां जहां यूपीआई जाता जाएगा, ये जो यूपीआई की अच्छी वायरस है आसानी की, ये आसानी की वायरस उसके साथ साथ चलेगी और जहां यूपीआई जाएगा उस चीज को आसान बना देगा, ये ऐसा मुझे नजर आता है। और इसमें पॉसिबिलिटीज, संभावनाएं असीमित है क्योंकि आप जैसे जैसे ये इवॉल्व कर रहा है, जैसे जैसे ये उभर के आ रहा है, आप देखिए 2016 का यूपीआई और आज 9 साल बाद 10 साल बात का यूपीआई में आपको अंतर दिखाई देता है। और मजे की बात इसमें मैंने ये देखी हर्ष के, ये अंतर आपको कोई किताबों में नहीं पढ़ना पड़ता है, आप जब अपना ऐप खोलते हैं, यूपीआई ऐप खोलते हैं जिस भी प्लेटफॉर्म से, आपको सडनली दिखता है अरे ये काम तो मुझे पहले वहां से करना पड़ता था, इस काम के लिए तो मुझे कॉल करना पड़ता था, इस काम के लिए तो मुझे ये करना पड़ता था। आप देखते हैं कि वो उसकी साइलेंटली पीछे जो रिसर्च चल रही है, चुपचाप जो रिसर्च चलती है, वो अपने आप अब सब काम कर लेता है।
शरद जी, आपका आकाशवाणी से बातचीत करने के लिए कार्यक्रम सुर्खियों में बहुत बहुत धन्यवाद।
शुक्रिया, थैंक यू।
अभी आप सुन रहे थे यूपीआई क्रांति, डिजिटल भुगतान में विश्व में अग्रणी भारत पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे हर्ष रंजन। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
सुर्खियों में।